ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। लिखा हुआ है आपके डिजिटल बोर्ड पे, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं इस श्लोक को। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कीर्ताञ्जलिः अभाषत। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवां कीर्ताञ्जलिः अभाषत। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवां कीर्ताञ्जलिः अभाषत। बोलिए। और कोई सब मिल के एक साथ पढ़िए। प्रणम्य शिरसा देवं कीर्ताञ्जलिः अभाषत। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात स वह विस्मयाविष्टः आश्चर्यचकित होकर हृष्ट रोमा हर्ष से रोमांचित धनंजय अर्जुन प्रणम्य प्रणाम करके शिरसा सिर केवल देवम भगवान को कीर्तांजलि हाथ जोड़कर उभासत कहने लगा। अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तात्पर्य, एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आगार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित हैं। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्वक मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोवीष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम्। श्रीगुरुन् वैष्णवांस च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांस च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपशरोपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सूरतो पंगो मम मंद मते गति मत सर्वश्चापदां भोजो राधा मदन मोहनो। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। यह स्वानुभावम् अखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्म दीपम् अतिथितिरसताम् तमुवंदम् संसारिनाम करुणया पुराण गुह्यम् तम व्यास सुनमुपयामि गुरुं मुनिनाम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यह भगवद गीता का 11वां अध्याय है। संपूर्ण भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? हमारे प्रभु जी सामने ही समाधि में जा रहे हैं। अगर रेल का इंजन पटरी से उतर जाए क्या होगा? डब्बे की स्थिति क्या होगी? अगर कोई सामने ही सो जाए पीछे वालों का क्या होगा फिर? तो भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और भगवद गीता महाभारत का सार माना जाता है, या यूं कहें तो संपूर्ण वैदिक ग्रंथों का सार। और महाभारत में 18 पर्व हैं। जैसे गीता में अध्याय होता है ऐसे ही महाभारत को अलग अलग पर्वों में डिवाइड किया गया है और फिर उस पर्व को अध्याय में डिवाइड किया गया है और फिर अध्याय को अलग अलग श्लोकों में। तो 18 पर्व हैं महाभारत में, भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और महाभारत युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, दोनों पक्षों की सेनाओं को मिला करके। तो इस 18 अध्याय को पूर्ववर्ती आचार्यों ने 3 भाग में डिवाइड किया है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो भगवद गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं, अध्याय 1 से लेकर के 6 तक, उसमें विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं और अध्याय 7 से 12 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग का उपदेश देते हैं विशेष रूप से, और अंतिम के 13 से लेकर अध्याय 18 तक भगवद गीता में ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। तो हम जिस प्रसंग को, जिस संवाद को पढ़ रहे हैं, यह भगवद गीता के भक्ति योग के अंतर्गत है। अध्याय 11 है, श्लोक 14 है। ततः सौ विस्मयाविष्टो हिष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कीर्तांजलि अभासत। कहते हैं तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो इससे पहले के अध्याय को देखेंगे जो सुने होंगे, तो इससे पहले 10वें अध्याय में भगवान जो है अपने ऐश्वर्य के विषय में अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार से मैं इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, इस संपूर्ण जगत की मैं सृष्टि करता हूँ, उसका पालन करता हूँ और उसका संहार भी करता हूँ। तो अर्जुन के मन में इच्छा हो गई कि क्यों नहीं भगवान के इस रूप का हम दर्शन करें, जो ब्रह्मांड का रूप है या भगवान का जो विश्व रूप है उसका दर्शन करें। तो फिर ऐसे अर्जुन इससे पहले के श्लोकों में कहते हैं कि मैं मानता हूं आप जो बोल रहे हैं कि किस प्रकार से आप संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं। क्यों देखना चाहते हैं भगवान के विश्व रूप को? क्योंकि इसलिए अर्जुन देखना चाहते हैं विश्व रूप को कि भविष्य में प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो अपने आप को दावा कर सकते हैं मैं भगवान का अवतार हूं। तो फिर उसे अपने दावे की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप दिखाना पड़ेगा, इसलिए अर्जुन भगवान से भगवान के विश्व रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो इस 11वें अध्याय में जो है भगवान अर्जुन को दिखाते हैं कि वो केवल इस ब्रह्मांड के ही आदि कारण नहीं है, वो महाविष्णु के भी आदि कारण है ना। सामान्यतः जब मैं पहली बार गीता पढ़ा था तो गीता प्रेस का, तो उसमें पढ़ने से थोड़ा उतना ज्यादा गीता का प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ, तो मैंने प्रभुपाद जी की गीता पढ़ी। तो इस गीता को पढ़ने के बाद इसमें देखा सब जगह कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, विष्णु कहाँ चले गए गीता से। तो थोड़ा मुझे डाउट हुआ कि ऐसा कैसे, कृष्ण तो विष्णु के अवतार हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण विष्णु के भी आदि कारण है। तो धीरे धीरे कालक्रम में मुंबई आ गया, पढ़ाई किया और फिर इस्कॉन में जुड़ा। तो एक दिन भागवतम पढ़ने लगा और जब भागवतम के प्रथम स्कंद को पढ़ रहा था तो उसमें एक श्लोक आता है, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम रोके मिडयंती युगे युगे। उस श्लोक में कहते हैं जितने भी भगवान के अवतार हैं जिसका वर्णन किया है सूत गोस्वामी ने सोनक आदि ऋषियों से, कहते हैं वो सब कृष्ण के अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं। तो भी पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि क्या है, समझ में नहीं आया। लेकिन जब चैतन्य चरितामृत में उसी श्लोक की व्याख्या, एते चांस कला पुंस श्लोक की व्याख्या को पढ़ा तो कन्फर्म हो गया कि वास्तव में जो है कृष्ण महाविष्णु के भी आदि कारण है। तो इस अध्याय में इसका भी वर्णन किया गया है। तो भगवान अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए, अर्जुन को बोले तुम, तुम्हारे पास जो नेत्र है अनेन स्वचक्षुषा, तुम्हारे पास जो अभी वर्तमान में आंखें हैं उस आंख से तुम मुझे या मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकते हो। तो सवाल उठता है कि जो अर्जुन साक्षात भगवान को देख सकता है, उनके रूप माधुरी का आस्वादन कर सकता है, तो यह कैसे संभव है कि भगवान के विश्व रूप को नहीं देख सकता है? क्योंकि भगवान का जो विश्व रूप है या ब्रह्मांड का रूप है, भगवान तो अपनी एक अंश की शक्ति मात्र से इसको धारण करते हैं। तो फिर अर्जुन जो है जो साक्षात भगवान को देख सकता है, वो भगवान के अंश स्वरूप इस विश्व रूप, भगवान के विश्व रूप को क्यों नहीं देख सकता है? क्यों नहीं देख सकता है? देखना चाहिए कि नहीं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण की इस श्लोक के ऊपर टीकाएं हैं, उनका टिप्पणी है कि वो कहते हैं कि अर्जुन जो है भगवान के नरावतार हैं और कृष्ण स्वयं जो है आदि नारायण है। तो नर लीला कर रहे हैं इसलिए केवल अर्जुन को क्या बोलते हैं सरप्राइज, आश्चर्य देने के लिए, एक चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए। और भगवान अर्जुन को बोले कि तुम जो यह मेरा विश्व रूप देखोगे, ये कोई माया जाल है, इंद्रजाल नहीं है, है ना। जैसे कभी कभी जादूगर लोग कुछ कुछ दिखाते हैं जादू, कहते ये जादू टोना नहीं है, ये जो मेरा ब्रह्मांड का स्वरूप है वास्तव में यह जो है ये क्या बोलते हैं माया जाल नहीं, क्षणभंगुर है, टेम्पररी है, क्योंकि यह ब्रह्मांड का जो है कालक्रम में विनाश हो जाता है, लेकिन फिर भी वह नित्य है, मिथ्या नहीं है। इस तरह से उन्होंने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि एक बार जब माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, तो उस समय भगवान के रूप माधुरी को देख करके उनके मस्तक को चुम्बन करने लगी, स्तनपान कराते हुए। तो भगवान श्री कृष्ण को जम्भाई आ गया, है ना, जम्भाई आते हैं तो कैसे आ करते हैं लोग। जब जम्भाई आया तो माता यशोदा ने उनके मुख में क्या देखा, विराट रूप भगवान का, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण अंतरिक्ष। तो उस समय भगवान ने उनको ऐसा दिव्य चक्षु प्रदान नहीं किया था इस विश्व रूप को दिखाने के लिए। तो कहते हैं कि भगवान की एक ऐश्वर्य शक्ति है और एक जो है भगवान की प्रेम भक्ति की शक्ति है, प्रेम भक्ति या प्रेमय देवी करके शब्द आया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में। तो कहते हैं कभी कभी जो है लीला संपादन करने के लिए जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है वह भगवान की ऐश्वर्य का प्रदर्शन करती है। लेकिन भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जो है प्रेम देवी के सदैव अधीन हो जाती है। क्योंकि जब माता यशोदा एक बार ग्वाल वालों ने माता यशोदा को कंप्लेन की, भगवान के मित्रों ने, कि जब वो ब्रह्मांड घाट पे माता यशोदा स्नान करने गई थी तो भगवान वहां पे ब्रह्मांड घाट पे मिट्टी खा ली है, तो कंप्लेन की कि कृष्ण ने मिट्टी खाया है। तो माता यशोदा आ गई और उनको डांटी कृष्ण को और पूछी तुमने मिट्टी खाया है, बोले नहीं, बोले ये जो बलराम बोल रहे हैं ये भी झूठ बोल रहे हैं, बोले हाँ ये भी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि कल ही इनके साथ मेरा झगड़ा हो गया था, 36 कांकरा बोलते हैं 36 कांकरा, बोले तुमको विश्वास नहीं है, तुम मेरा मुख देख सकती है। और फिर भगवान कृष्ण जब मुख खोलते हैं तो क्या देखती है माता यशोदा, संपूर्ण ब्रह्मांड को देखती है विराट रूप, इतना ही नहीं भगवान के गोलोक धाम को भी देखती है और अपने आप को भी देखती है कृष्ण के मुख के अंदर। तो भगवान के इस ऐश्वर्य शक्ति को देख करके माता यशोदा आश्चर्यचकित हो जाती है कि मैं ये क्या देख रही हूं। लेकिन जो भगवान की प्रेम देवी जो शक्ति है भक्ति की, तो यह जो ऐश्वर्य शक्ति है माता यशोदा को विस्मय में डाल करके क्या किया, माता यशोदा को विस्मय में डाल करके माता यशोदा के क्रोध का समन किया। क्योंकि वो आई थी तो कृष्ण ने मिट्टी खाई या कृष्ण को डांट रही थी। तो इस तरह से जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है वो सदैव ही भगवान की जो प्रेम देवी शक्ति है उसके अधीन हो जाती है और उसकी सेवा करती है। तो इस तरह से ये जब अर्जुन भी भगवान के इस दैवी स्वरूप को देखे जिसका प्रकाश हजारों सूर्य से भी कई गुना ज्यादा था, है ना, मान लिया जाए अभी एक सूर्य गर्मी के मौसम में उगते हैं कितना प्रकाश होता है, यदि 1000 सूर्य एक साथ उग जाए और कोई व्यक्ति उसको देखे कितना प्रकाशमान दिखेगा। लेकिन अर्जुन तो इस रूप को देख लिया क्योंकि वो भगवान का भक्त था। लेकिन यही विराट रूप का जब केवल आंशिक प्रदर्शन भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन के पास संधि दूत बन के गए थे, शांति दूत बन करके जब प्रस्ताव लेकर गए थे, तो वहां पर जब थोड़ा सा प्रदर्शन किए तो भीष्म और कुछ अन्य लोगों को छोड़ करके दुर्योधन सहित सारे लोग अपने सिंहासन से नीचे गिर गए इस भयानक रूप को देख करके, ब्रह्मांड का विराट रूप को देख करके। लेकिन अर्जुन को क्या हुआ, अर्जुन भगवान का भक्त है और जो ही वो भगवान के इस स्वरूप को देखा, कहते हैं हृष्ट रोमा, रोमांचित हो गया, प्रसन्न हो गया भगवान को देखते ही और एकदम आश्चर्यचकित हो गया, अरे मैं जिसको मित्र समझता हूं कितने महान है मेरे मित्र जो संपूर्ण ब्रह्मांड को केवल एक अंश मात्र से धारण करते हैं और साथ ही साथ वो उससे अलग भी मेरे सामने स्थित हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 12 प्रकार के भक्तों का संबंध होता है भगवान के साथ और इस प्रकार से उन संबंधों में जो है जब भगवान की सेवा भक्त करते हैं तो उसे अलग अलग रस का अनुभव होता है, आनंद प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विश्व रूप को देखने के बाद जो अर्जुन को आनंद प्राप्त हुआ उसे अद्भुत रस कहते हैं, अद्भुत रस। तो कितने प्रकार के रस हैं? तो कहते हैं 12 प्रकार के भक्ति के रस हैं जो आस्वादन किए जाते हैं अलग अलग भक्तों के द्वारा, जिसमें से 5 मुख्य रस हैं, शांत रस, दास्य रस, उसके बाद सख्य रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस, और 7 प्रकार के जो रस हैं वो गौण रस हैं। पता है कि नहीं को 7 प्रकार के गौण रस भक्ति रसामृत सिंधु के चतुर्थ भाग में वर्णन किया गया है। इन 12 प्रकार के भगवान के प्रति जो भक्त का रस है गौण रस का चतुर्थ भाग या चतुर्थ लहरी में वर्णन है। तो उसमें कहा गया है कि ये जो 12 प्रकार के रस हैं उसमें से एक रस है अद्भुत रस, है ना, हास्य रस है, अद्भुत रस है, वीर रस है, करुण रस है, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस। ये 7 प्रकार के रस जो गौण है उसमें से अर्जुन जो यहां पर अनुभव कर रहा है वह अद्भुत रस का अनुभव कर रहा है। एकाएक भगवान का स्वरूप देखते ही आश्चर्य में पड़ गए और आनंदित हो गए। तो यह अद्भुत रस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष अद्भुत रस और एक अप्रत्यक्ष अद्भुत रस। तो जब भक्त भगवान के ऐश्वर्य को देख करके साक्षात आंखों से देख करके डायरेक्ट जब आश्चर्यचकित हो जाता है तो उस समय जो रस आस्वादन किया जाता है, उस समय जो आनंद उनको उत्पन्न होता है उस रस को बोलते हैं प्रत्यक्ष अद्भुत रस। और जब भक्त कथा सुनने के माध्यम से केवल सुन करके भगवान के ऐश्वर्य के विषय में, लीलाओं के विषय में आश्चर्यचकित हो जाता है तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष अद्भुत रस। इन दोनों प्रकार के रसों का वर्णन जो है भगवान के भक्त करते हैं और भागवत में दोनों प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है। जैसे प्रत्यक्ष अद्भुत रस, इसमें कहते हैं एक बार जो है नारद जी द्वारका गए कि भगवान ने तो 16,108 रानियों के साथ विवाह किया है, कैसे संभाल रहेंगे उसको, थोड़ा जाके देखें। तो अलग अलग कमरे में गए तो देखने कि भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य कर रहे हैं, एक ही समय में अलग अलग कार्य, उनको देख करके आश्चर्य हो गया। रोमा जी कितने महान है भगवान कि एक ही साथ इतने सारी रानियों के महलों में एट ए टाइम वो भी अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अद्भुत रस। और कहते हैं एक बार जो है माता यशोदा की एक सखी, जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए थे, कौन से हाथ से, बाएं हाथ से कि दाएं हाथ से, बाएं हाथ से, वो भी छोटी उंगली पे। तो माता यशोदा की एक सखी कहती है हे यशोदा, तुम्हारा जो ये लाला है ये तो दूध पीने वाला है, बालक है, छोटा सा दूध पीता है, इसका तो दूध का दांत भी नहीं गिरा है अभी, लेकिन देखो इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत जो जिसकी चोटी बादल को छूती है उसको केवल बाएं आंख से, हाथ से, वो भी बाएं हाथ की छोटी उंगली से उसको उठा लिया है। ये देख करके जो है माता यशोदा की जो सखी थी उनको आश्चर्य हुआ, आनंद हुआ। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अद्भुत रस, और इसी रस का यहाँ पर अर्जुन आस्वादन कर रहे हैं। और एक होता है अप्रत्यक्ष अद्भुत रस, जब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा का श्रवण कर रहे थे तो महाराज सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताए कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर की 11 अक्षोहिणी सेना समझ लीजिए कि महाभारत में जितनी दोनों सेना मिलाकर के एकत्र हुई थी उसकी आधी सेना को केवल 3 बाण से भगवान कृष्ण ने संहार कर दिया। कितने? नरकासुर की 11,000 अश्वहीन सेना को केवल 3 बाण से। तो भगवान की ऐसी अद्भुत शक्ति को देख करके जो है महाराज परीक्षित की आंखों से आंसू गिरने लगे, आनंद से वो रोमांचित हो गए कि भगवान का कितना ऐश्वर्य शक्ति है। तो केवल सुन करके जब भक्तों के हृदय में ऐसा आनंद उत्पन्न हो जाता है तो उस रस को बोलते हैं अप्रत्यक्ष भक्ति रस। तो इस श्लोक में मुख्य रूप से जो है भगवान के प्रत्यक्ष जब अद्भुत भक्ति रस का आस्वादन अर्जुन करते हैं तो फिर भगवान को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगते हैं और प्रणाम करके भगवान की स्तुति करते हैं। अब भगवान की स्तुति में अर्जुन क्या बोलने जा रहे हैं अगर कल आएंगे तो इसका श्रवण आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण जगत गुरु शील प्रभुपाद की, भगवद मानी श्रीमद भगवद गीता की, श्री श्री राधा रास बिहाई की, पतित पावन गौर निताय की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।